ओम शांति। यहां पर आप जिसको भी मिलेंगे वो आपको इसी तरह ग्रीट करेगा और 3 दिन के अंदर ये आपकी भी ग्रीटिंग बन जाएगी। जब भी हम किसी से मिलते हैं हम नमस्ते करते हैं, ऑफिस में होते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हैं, तो जो भी हमारी ग्रीटिंग होती है वो एक्चुअली दूसरे के लिए एक ब्लेसिंग होती है ना। जब हम कहते किसी को गुड मॉर्निंग तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक दुआ कर रहे हैं कि आपकी आज की सुबह बहुत अच्छी रहे। इसी तरह इस विद्यालय में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम कहते ओम शांति। ये शब्द हमने बहुत बार सुना है लेकिन इसका अर्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, आई एम अ पीसफुल बींग। तो हर बार जब हम किसी से मिलते हैं हम उसी शब्द को फिर से दोहराते हैं, क्योंकि कोई भी शब्द अगर बार बार दोहराया जाएगा तो क्या होने लगेगा, क्या होने लगेगा, कोई भी चीज अगर बार बार रिपीट करेंगे तो वो हमारे अंदर हमारी सोच, फिर हमारा संस्कार और फिर वो हमारा व्यवहार बनती जाएगी। हम एक ऐसी दुनिया में चल रहे हैं जहां बहुत आम बात हो गई है सारा दिन कहना आई एम स्ट्रेस्ड। आप में से कोई स्ट्रेस्ड होता है रोज जब वहां होते हैं वापस अपने शहर में? कौन कौन स्ट्रेस्ड होता है, हाथ उठाओ प्यार से, कौन कौन होता? अच्छा, तो और हम उसको बोलते भी बहुत बार है आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। एक आई एम स्ट्रेस्ड बहुत कॉमन है, दूसरा आई एम बिजी बहुत कॉमन है। आप में से भी कोई बिजी है? बहुत बिजी है, टाइम ही नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने आप का शुक्रिया करिए, अपने कर्मों का शुक्रिया करिए कि इतने बिजी बिजी दुनिया में से भी निकलकर 4 दिन अपने लिए निकाला है। ये श्रेष्ठ कर्मों का फल है, इतना आसान नहीं आजकल 4 दिन निकालना अपने लिए, राइट? तो किसका शुक्रिया हो इसके लिए, इसके लिए किसको शुक्रिया करें? परमात्मा तो सबको बुलाता है, उसने आपको नहीं सिलेक्ट किया है, निमंत्रण तो सबको जाता है। आप यहां आए किसकी वजह से, किसको शुक्रिया करें? खुद को शुक्रिया करें, अपनी बुद्धि को शुक्रिया करें जिसने प्रायोरिटाइज किया कि खुद के लिए समय निकालना है, खुद की शक्ति को क्या करना है, बढ़ाना है। अभी तो शुरुआत है, 3 दिन जो हमने निकाले उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है, आप किस इंटेंशन से आए हैं, या ये कहें कि 3 दिन के बाद आप यहां से क्या लेके जाना चाहते हैं? एनीबडी? हाँ जी, बेटर सेल्फ। फिर बेटर सेल्फ को भी थोड़ा सा स्पेसिफाई करें, क्योंकि सभी तो बहुत अच्छे हैं, अब उसमें बेटर क्या करना है, मन की शांति को क्या करना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ कराना है। वर्ड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस फ्री लाइफ कहते हैं उसमें भी स्ट्रेस वर्ड का ही उच्चारण हो रहा है, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ की जगह क्या बोल देंगे उसको, हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ, ये बोलेंगे। यहां से 3 दिन एक वोकैबुलरी सीख कर जानी है, जैसे जुडिशरी एक वोकैबुलरी है ना, एक वोकैबुलरी है, वो वोकैबुलरी सिर्फ आपको ही आती है। हम कोई कागज पढ़ते हैं उसमें से हमें 0.1% समझ में आता है आपकी वोकैबुलरी, बाकी तो कुछ समझ में नहीं आता। हम कहते हमको नहीं समझ में आता क्या लिखा है इस अग्रीमेंट के अंदर, क्योंकि वो एक वोकैबुलरी है, वो एक भाषा है। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी भी एक भाषा है, लेकिन ये एक ऐसी भाषा है जो छोटा छोटा बच्चा भी सीख जाता है। और वो भाषा ये है कि जो आप बनना नहीं चाहते वो कभी नहीं बोलना, जो आप जीवन में नहीं चाहते कि हो वो कभी नहीं बोलना, जो आप चाहते नहीं कि दूसरा हो वो कभी उसके बारे में नहीं बोलना, जो आप चाहते हैं वो ही बोलना, इवन इफ वो अभी नहीं है, लेकिन हमें बोलना ऐसे है जैसे वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? रिपीट करेंगे एक बार, जो हम बनना नहीं चाहते वो क्या करना, वो नहीं बोलना, जो बनना चाहते हैं वो बोलना जैसे कि बन चुके हैं। जैसे आपने पढ़ाई शुरू की होगी, 3-4-5 साल चल रही है, बोलेंगे मैं लॉयर बनूंगा बनूंगा बनूंगा। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहेंगे मैं लॉयर बन चुका। आसपास के लोग कहेंगे अभी नहीं बने हो, बोलेंगे सोच ये बनानी पड़ेगी कि बन चुके हैं, जब सोच ऐसी रखेंगे तभी बनेंगे। इसीलिए अभी हम पूरी तरह से ऑलवेज हैप्पी नहीं बने हैं। हैप्पी हैं लेकिन कभी कभी बीच में वो दूसरे इमोशंस भी आ जाते हैं, लेकिन आज से हमें अपनी वोकैबुलरी बनानी पड़ेगी, आई एम अ हैप्पी सोल। रिपीट करेंगे, अब आप वापस जाने के बाद कहेंगे मैं हमेशा खुश रहती हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी। तो लोग बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, आई एम ऑलवेज हैप्पी। और जब आप जाएंगे और कोई आपका चेहरा देखेगा और कहेगा क्या बात है आज आप खुश क्यों हो, क्योंकि लोगों के हिसाब से कुछ बात होनी चाहिए खुश होने के लिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये क्या बात है आप इतने खुश क्यों हो आज, तो आप कहेंगे क्योंकि ये मेरी नेचर है, क्योंकि खुशी हमारी नेचर है। है नेचर है, लेकिन हम बोल बोल के कि आई एम स्ट्रेस्ड। पता है स्ट्रेस था, ये नहीं है कि नहीं था, लेकिन उस शब्द का जितनी बार उच्चारण किया, बोला बोला बोला, लिखा पढ़ा सुना, तो वो जितना था ना उससे वो कई गुना क्या हो गया, मैग्निफाई हो गया, क्योंकि जो हम बोलेंगे वही होगा। आई एम बिजी, आप बिजी हैं? हाँ चलो अब आप नई वोकैबुलरी से बात करें, इतनी इजी है, मैंने तो बोलता बहुत इजी वोकैबुलरी है। आई एम बिजी, आपके पास टाइम है? हाँ तो अभी कोई भी मिलेगा बोलेगा आपके पास टाइम है, बोलो बहुत टाइम है, बोलते फिर अभी बैठो, बोलो नहीं अभी मेरे पास दूसरा काम है। लोगों को लगता है टाइम है मतलब फिर आप पूरे वेले हो, आपके पास कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। आई एम वेरी इजी, लेकिन मेरी काम की प्रायोरिटी तो बनी होगी ना, एक शेड्यूल तो बना होगा ना, अभी ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है, लेकिन बिजी नहीं है। बिजी का मीनिंग होता है यहां बहुत बिजी है। बिजी और इजी काम पे डिपेंडेंट नहीं होता है, बिजी और इजी सोच पे डिपेंडेंट होता है। कुछ लोग रिटायर होने के बाद भी घर पे भी बहुत बिजी होते हैं, वो बोलेंगे पूछो मत कितना मेरे को काम है, मैं बहुत बिजी हूं बहुत बिजी हूं। तो जैसे कम और ज्यादा अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं होता, किस पे डिपेंडेंट होता है, हमारे पास धन कम है या ज्यादा है ये किस पे डिपेंडेंट होता है, सोच पर। इसी तरह समय कम है या ज्यादा है ये किस पे डिपेंडेंट होता है, सोच पर। और जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ये वर्ड आज से नहीं बोलना, क्योंकि जितनी बार हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम एक कमोडिटी है, ठीक से टाइम एक चीज है, ठीक है। तो लेट्स से ये एक चीज है जिसका नाम टाइम है, और मैं बार बार कह रही हूं मेरे पास ये चीज नहीं है, तो मैंने उस चीज के साथ अपना रिश्ता क्या कर लिया, मैंने उस चीज के साथ अपना रिश्ता क्या किया, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास ये चीज है ही नहीं। तो जितनी बार उसका उच्चारण करेंगे उतना उसकी कमी महसूस होती जाएगी। काम उतना ही करेंगे, समय 24 घंटे ही होगा, लेकिन समय के साथ का रिश्ता नहीं बनेगा। बहुत जरूरी है समय के साथ क्या करना है, समय के साथ क्या करना है, रिश्ता बनाना होता है। और समय के साथ रिश्ता बनाने के लिए समय का सम्मान करें, और जब समय का सम्मान करेंगे समय आपका ध्यान रखेगा। आने वाला समय आसान नहीं है, इस आने वाले समय में कुछ चीजों के साथ अपना रिश्ता बना के रखें। सबसे पहले समय के साथ रिश्ता बना के रखें। आपको लग रहा है पिछले 2-3 साल में समय बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, फास्ट चेंज हो रहा है, किस किस को लग रहा है फास्ट चेंज हो रहा है। कुछ दिन बीतता नहीं बिना कुछ नया कुछ हो, मतलब जैसे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ चल रही है वो चलनी बंद हो गई है। एक चीज होगी पूरी नहीं हुई, दूसरी दूसरी नहीं होगी पूरी थी, अभी एक चल रहा था पूरा हो रहा था, अभी कोविड, अभी कुछ कुछ ना कुछ अभी चलता रहेगा। ये है समय का फास्ट चेंज। तो परमात्मा हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, कि समय तो बहुत फास्ट परिवर्तन हो रहा है, स्वयं का क्या हालचाल है। दो शक्तियां हैं, एक स्वयं एक समय, दोनों बदलने के लिए हैं, लेकिन कौन ज्यादा जल्दी बदल रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन किसको बदल रहा है। हाथ रखें दोनों, एक पे खुद को रखें, एक को समय को रखें। समय हमें बदल रहा है या हम समय को बदल रहे हैं? समय हमें बदल रहा है या हम समय को बदल रहे हैं? हाँ, मतलब किसका किस पे प्रभाव है, समय किस तरफ जा रहा है, समय किस तरफ जा रहा है। समय किस तरफ जा रहा है? मैंने कोई विनाश थोड़ी होने वाला है। नो, विनाश नहीं होना। ये एक सबसे ब्रेकिंग न्यूज है अच्छी जो भगवान ने आके दी थी कि कोई विनाश नहीं होना है, लेकिन ये होना है कि महान परिवर्तन होना है। बदलाव नहीं बहन, बदलाव तो हमेशा ही हुआ है। सो एक होता है चेंज, तो चेंज है बदलाव, छोटे 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 चेंजेस होते रहते हैं, और एक होता है पैराडाइम शिफ्ट, महापरिवर्तन। तो सृष्टि एक साइकिल की तरह चलती है, घूमती है। समय, बचपन से सुना था ना, समय का चक्र, काल चक्र, काल मतलब समय, और वो चक्र है मतलब काल एक चक्र है, समय एक चक्र है, और ये चक्र हम रोज देख रहे हैं। कल भी सुबह हुई थी इस टाइम, फिर दोपहर हुई थी, फिर शाम हुई थी, फिर सुबह हुई, फिर दोपहर होगी, चक्र है। सो टाइम इज साइक्लिक, समय चक्र के रूप में घूम रहा है। तो हर 24 घंटे का चक्र है, हर 365 दिन का एक चक्र है। 12 महीने पहले भी गर्मी हुई थी, 12 महीने पहले भी बारिश हुई थी, फिर हो रही है और अगले साल फिर होगी, विच मीन्स इट इज ऑल मूविंग साइक्लिक। स्प्रिंग समर ऑटम विंटर घूमता रहेगा 12 महीने के अंदर अंदर, वो रिपीट होता जाएगा। तो एक छोटा सर्कल है 24 आवर्स, फिर एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल है 365 दिन, 365 डेज, एक उसके बाहर एक और बड़ा सर्कल है, और वो सर्कल है 5000 ईयर्स, वो 5000 साल का एक चक्र है, और उस चक्र के अंदर भी 4 पार्ट्स ही आते हैं, और वो भी एक चक्र है, वो भी घूमता रहता है। तो उस चक्र के 4 पार्ट्स क्या हैं? पहले सत्युग है, फिर त्रेता युग है, फिर द्वापर युग है, फिर कलयुग है, और फिर कलयुग के बाद कौन सा पार्ट आ जाएगा? तो सत्युग से कलयुग तक जो हो रहा था वो बदलाव था, दैट वॉज अ चेंज। चेंज कैसे हो रहा था? सत्युग मतलब दुनिया कैसी होगी, सत्युग मतलब दुनिया कैसी होगी, परफेक्ट है ना, परफेक्ट। लेकिन इट्स लाइक अगर हम इधर उंगली रखें एक बार, आत्मा का रहने का स्थान, आज सुबह हमने देखा एनर्जी यहां रहती है, तो एनर्जी है, उसकी कोई शेप नहीं है, उसका कोई साइज नहीं है, लेकिन जस्ट विजुअलाइज करने के लिए हम देखें कि यहां एक बैटरी है जिसको हम सोल पावर कहते हैं। तो इसको एक मिनट हाथ रखें, यहां एक बैटरी है। अब अपने आप से पूछें, सत्युग में ये बैटरी कैसी होगी? सत्युग जो परफेक्ट वर्ल्ड है उसमें ये आत्मरूपी बैटरी कैसी होगी? फुल चार्ज्ड होगी। कौन कौन अग्री करता है? सत्युग में आत्मरूपी बैटरी फुल चार्ज्ड होगी। अब बदलाव जो है, चेंज जो है, कि सत्युग से त्रेता युग आया, मतलब युग थोड़ा सा क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, तो बैटरी भी क्या हुई होगी, थोड़ी सी कम। तो सत्युग से लेके त्रेता युग तक भी बैटरी बहुत धीरे 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 कम, उसको बदलाव कहते हैं, दैट इज अ चेंज। फिर त्रेता से द्वापर, फिर द्वापर से कलयुग, धीरे 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 कम। अपने फोन की बैटरी देखें, कैसे डिस्चार्ज होती है? धीरे 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 धीरे। पूरा दिन यूज करेंगे ना तो सुबह चार्ज थी, पूरा दिन यूज करेंगे ना तो रात तक वो डिस्चार्ज होगी। चार्ज कितनी देर में होती है? फोन की बैटरी चार्ज कितनी देर में होती है? एक घंटे में। डिस्चार्ज होने के लिए कितने घंटे लगते हैं? तो वो फर्क है। तो चेंज मीन्स धीरे 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 बैटरी कम हो रही है, दैट वॉज अ चेंज। महान परिवर्तन मीन्स एक घंटे के अंदर बैटरी फिर से फुल्ली चार्ज हो जाती है। तो अब कौन सा युग चल रहा है? अब कौन सा युग चल रहा है? रोज सृष्टि पर क्या हो रहा है? कोई खुशखबरी सुनने को मिलती है कभी कुछ? रोज कुछ ना कुछ। और उसमें भी जब कलयुग भी अभी नहीं शुरू हुआ, कलयुग अभी शुरू नहीं हुआ है, कलयुग अभी शुरू नहीं हुआ है, कलयुग अभी फिनिशिंग को है। और कोई जब बैटरी फिनिशिंग को होती है तो कितनी फास्ट डिस्चार्ज होती है? आप देखो फोन को एकदम ध्यान से चेक करना, ऑब्जर्व करना। फोर लाइन्स होंगी, थोड़े टाइम के बाद थ्री होगी, फिर थोड़े टाइम के बाद टू होगी, फिर थोड़े टाइम के, लेकिन वो वन से जीरो कब हो जाता है पता चलता? अभी तक तो थी ना थोड़ी बैटरी, ये कब खत्म हो गए? क्योंकि जो एंड का डिप्लीशन होगा वो कैसे होगा? बहुत फास्ट होगा। कोविड के बाद से अगर हम देखें, सोल पावर अफेक्ट हुई है। वायरस तो शरीर का था लेकिन मेजॉरिटी मन ने बहुत चिंता, बहुत दर्द, बहुत दुख, बहुत तनाव, बहुत फियर, एंजाइटी क्रिएट किया। फिर हम में से बहुतों को वो बीमारी भी हुई, फिर हम में से कईयों ने अपने परिवार का सदस्य भी खोया, कईयों ने नौकरी खोई, काम खोया। सडनली सृष्टि की हवा क्या हो गई दो साल के लिए? इट हैड लॉट ऑफ पेन, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस एकदम से बढ़ गया दो साल के लिए। जैसे ही हवा दो साल के लिए दूषित हो गई, सब कुछ अफेक्ट हो गया, प्रकृति अफेक्ट हुई। आप कोविड के बाद प्रकृति की स्थिति देखिए। क्लाइमेट का और नेचर का अब्यूज तो हम बहुत पहले भी कर रहे थे, सडनली हमने ज्यादा नहीं करना शुरू किया है कोविड के बाद, लेकिन दो साल के अंदर प्रकृति के ऊपर जो वाइब्रेशन का असर पड़ा है, आप बिलीव करते हैं प्रकृति पर वाइब्रेशन का असर पड़ता? यस, पौधों पर पड़ता, पड़ता पौधों पर, पड़ता हवा पर, पड़ता पानी पर, पड़ता। तो दो साल प्रकृति को क्या मिला मनुष्य आत्मा से? फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डर, ग्रीफ, क्योंकि इतने परिवारों ने सदस्य खोया, दर्द उन आत्माओं का जिन्होंने अचानक शरीर छोड़ा। तो प्रकृति को बहुत पेन मिला है। और आप देखो कोविड के बाद प्रकृति इज ऑल्सो नॉट द सेम, मनुष्य आत्मा तो इज डेफिनेटली नॉट द सेम आफ्टर कोविड। क्योंकि एक बार जब इतनी सृष्टि में दर्द फैलता है, इट्स लाइक आपका कमरा, आप अपने कमरे में जाइए अभी एक मिनट मन से, चाहे घर में चाहे ऑफिस में, आपके कमरे का वाइब्रेशन कौन क्रिएट करता है? आपके कमरे का वाइब्रेशन कौन क्रिएट करता है? उंगली रखे उन पे, कौन क्रिएट करता है? तो क्रिएट भी हम करते हैं, फिर उसी वाइब्रेशन के अंदर सारा दिन बैठे भी हम ही हैं। तो हम ही क्रिएट करते हैं और वो वाइब्रेशन हम पर ही असर करता है। अब आप मंदिर में जाइए या कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप में जाइए, वहां का वाइब्रेशन कौन क्रिएट करता है? वो भी क्रिएट करते हैं हम, लेकिन फिर जब हम उधर अंदर जाके बैठते हैं वो हमको एनर्जाइज भी करता है। तो ये एक रूल है, ये आप अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। आपकी वाइब्रेशन क्रिएट भी करते हैं आप और उसका प्रभाव भी पड़ता है आप पर ही। अगर आप अपने कैबिन में बैठकर चिंता कर रहे हैं, किसी बात पर गुस्सा कर रहे हैं, किसी से चिल्ला रहे हैं, किसी बात की टेंशन है, तो वो हवा में आप ही अपनी वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हैं। हो सकता है आधे एक घंटे के बाद आप उस बात को खत्म करते हैं अपने माइंड पर, लेकिन आपने अपनी कमरे की हवा को क्या कर दिया, दूषित कर दिया। अब भले आपने सोचना बंद कर दिया है, लेकिन अब वो हवा आपके ऊपर प्रभाव डालकर आपको डिप्लीट कर रही है। यही जब आप यहां से वापस जाएंगे, एक छोटी सी प्रैक्टिस करना, सुबह सुबह गए अपने कैबिन में बैठे, 5 मिनट पहले बैठकर मेडिटेशन करना अपने कमरे के अंदर, तो फिर अपने कमरे को किसने एनर्जाइज कर दिया? हमने एनर्जाइज कर दिया। फिर वो एनर्जाइज्ड वाइब्रेशन किसको सहयोग देगी? हमें ही सहयोग देगी। और फिर जो आपसे मिलने आएंगे उनको वो क्या देगी? अभी क्या हो रहा है, हम अपने नॉर्मल ऑर्डिनरी स्ट्रेसफुल थिंकिंग से चल रहे हैं, हम अपने कैबिन में आके बैठ गए, हमारी वाइब्रेशन वो ही बन गई। थोड़ी देर के बाद हमसे क्लाइंट मिलने आया, वो कोई हैप्पी मूड में तो आया नहीं है, राइट? वो कोई आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करने तो आए नहीं है, धोखा, चीटिंग, बाकी तो और ज्यादा 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 सब कुछ। तो आपके कमरे में सारा दिन कौन से शब्दों का उच्चारण हो रहा है? नेगेटिव तो दुनिया में भी हो रहा है, आपके कमरे में नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव तो दुनिया में भी है, आपके कमरे में टॉक्सिक है, क्योंकि द वर्स्ट दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड वो आपके कमरे में डिस्कस होता है, राइट? अगर मैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जाऊं, नेगेटिव वहां भी है, स्ट्रेस है, ईर्ष्या है, जेलेसी है, गुस्सा है, क्रिटिसिज्म है, कंपैरिजन है, कंपटीशन है, उसको नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन आपके रूम में नेगेटिव बातें नहीं हो रही हैं, आपके रूम में टॉक्सिक बातें हो रही हैं। आपके रूम में कोई क्या नफरत की बात कर रहा है, कोई अपनी फैमिली से नफरत कर रहा है, कोई अपने भाई या बहन से प्रॉपर्टी पर लड़ रहा है, दैट इज हेट्रिड, हेट्रिड। तो आप सारा दिन कौन सी एनर्जी से एक्सपोज्ड है? आपको पता है लॉ स्कूल से ये फर्स्ट डे से सिखाया जाना चाहिए था, ये फर्स्ट डे से आपको सिखाया जाना चाहिए था कि आपकी जो प्रोफेशन है उसमें आप सारा दिन टॉक्सिक माइंड एंड टॉक्सिक वर्ड से एक्सपोज होने वाले हैं, राइट? है यस और नो? यस। तो विच इज फाइन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन हमें उस समय से सिखाया जाना चाहिए था कि हमें अपने आप को उससे कैसे बचाना है। अगर किसी का प्रोफेशन है उसने जाके आग बुझानी है तो वो ऐसे ही उठ के थोड़ी चला जाएगा आग बुझाने के लिए। अगर गया ऐसे ही आग बुझाने के लिए तो क्या हो जाएगा? तो आप जो कहते हैं आई एम स्ट्रेस्ड, उसमें से मेजोरिटी स्ट्रेस आपकी प्रॉब्लम्स का है ही नहीं, वो मेजोरिटी स्ट्रेस किसका है? वो टॉक्सिक वाइब्रेशन में सारा दिन बैठने का, वही बात सुनने का, वही बात बोलने का, वही बात शाम को फाइल में पढ़ने का, और वही बात अपने कलीग से भी डिस्कस करने का। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन कंपलसरी होनी चाहिए थी फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लॉ स्कूल। तो अगर आप में से कोई भी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो अभी से करो। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बताओ हां जी कि नहीं। तो तब नहीं हुआ, अब से कर सकते हैं? अब से कर सकते हैं? अब से आप अपने आप को ये तो नहीं कहेंगे हमारे पास टाइम थोड़ी, हम इतने बिजी हैं। आपके पास कितना टाइम है? अच्छे से बोलो। इधर अच्छे से इसलिए बोलना होता है क्योंकि जो आप बोलेंगे वो कौन सुनने वाला है? जो आप बोलेंगे वो आपके यहां रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत बार बोला ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसा वो गाना रिकॉर्ड हुआ है कि बिना सोचे भी गाना बजता रहता है। थोड़ा सा कोई कुछ बोले नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं, भाई रुको तो सही, सुनो तो सही, सोचो नहीं, वो गाना रिकॉर्ड हो गया ना। तो गाना ध्यान से रिकॉर्ड करना है। आज कौन सा गाना रिकॉर्ड करेंगे? मेरे पास बहुत टाइम है। टाइम एक कमोडिटी नहीं, टाइम एक प्रायोरिटी है। आज आपने 4 दिन निकाले, ये आपने प्रायोरिटाइज किया। बाकी सब क्यों नहीं आए? बाकी सब क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया, दैट्स ऑल। इट इज नॉट दैट आपके पास उनसे ज्यादा टाइम था, नहीं। टाइम इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। हम किस चीज के लिए बोलते हैं टाइम नहीं है? जो हमारी प्रायोरिटी पे ऊपर नहीं आ रहा है। जिस दिन हमने उसका इंपॉर्टेंस समझा
कि ये हमारी लाइफ को क्या करेगा, हम उसको प्रायोरिटी पर रखेंगे। थोड़े दिन के लिए हमें उसको शेड्यूल में डालना पड़ेगा, थोड़े दिन के बाद वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी जब हमें पता चलेगा कि उसका मुझ पर क्या फायदा हो रहा है। तो ये आपकी कुर्सी है, ये आपका कैबिन है, ये आपकी टेबल है, और हर थोड़ी देर के बाद आपकी टेबल के अक्रॉस लोग दर्द में आ रहे हैं। अगर नफरत में नहीं आ रहे तो दर्द में आ रहे हैं, बट लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी से आप एक्सपोज्ड हैं। चाहे किसी ने किसी के साथ गलत किया है या किसी का किसी के साथ गलत हुआ है, बोथ वेज दे आर इन द लोएस्ट एनर्जी। और आप एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ, मॉर्निंग टू नाइट, आप लोएस्ट एनर्जी से एक्सपोज्ड हैं और आप उसके लिए कुछ नहीं करते। आज थोड़ी सी गंदी जगह हाथ पे लगा लो तो व्यक्ति जाके 20 सेकंड उसके लिए हाथ धोता है उसके बाद। हम रोज 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 वही इन्फेक्शन को मिलते जा रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, शाम को वो इन्फेक्शन कहां आ रही है? शाम को वो इन्फेक्शन जो हमारी एनर्जी फील्ड में भर जाती है, वो शाम को कहां आ रही है? हमारे घर। और हमारे घर आते ही वो किसको मिल रही है? परिवार को। इज दैट ओके? इज दैट राइट? इज दैट गुड? नहीं। परिवार से मिलने से पहले अपनी इन्फेक्शन को क्या करना चाहिए? क्लीन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बट अब उस टाइम एंड में कैसे क्लीन करेंगे? तो फिर क्या करना चाहिए? शाम को अगर वो इन्फेक्शन नहीं लेके आनी घर, तो उसको साफ रखना है एनर्जी फील्ड को। लेकिन पूरा एनर्जी फील्ड को गंदा करके अभी घर में एंटर होने से पहले कैसे साफ करेंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाइट पहना है। आप में से भी कईयों ने यहां व्हाइट पहना है। अगर आपको सुबह से रात तक इसको व्हाइट रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुबह पहन लिया, सुबह व्हाइट है, रात तक पहन के रखना है तो आपको क्या करना होगा? काम तो सारे करने, अभी यहां तो आपको बहुत ज्यादा काम नहीं है, बट फिर भी आप काम के दिन भी करके देख सकते हो। आप रसोई में खाना बनाते हुए भी पूरा दिन व्हाइट पहन के देख सकते हो। आप यहां जाएंगे, आप रसोई में देखेंगे सबने व्हाइट ही पहना है। गार्डन में कोई है वो भी व्हाइट ही पहन रहा है, कार के गैराज में कोई है वो भी व्हाइट ही पहन रहा है। काम सबके अलग अलग होंगे, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है कि पूरा दिन उस वाइट को क्या रखना है। सिर्फ कपड़े को ही देख लेते हैं अभी। अगर हम सुबह वाइट पहने और रात तक उसको वाइट रखना है तो क्या ये हो सकता है? यस और नो? रात तक ये वाइट रह सकता है? कौन कौन सोचता है रह सकता है? कौन सोचता है नहीं रह सकता? कौन सोचता है नहीं रह सकता? अच्छा, जो सोचते हैं रह सकता है वो उनको बताऊं कैसे रह सकता है? सिर्फ क्या करना है? ध्यान रखना है। और ध्यान रखना मतलब मुझे इसको साफ रखना है, ये मेरी प्रायोरिटी बन जाती है। तो मैं क्या करूंगी? चलूंगी, इधर जाऊंगी, उधर जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, कोई गाड़ी में बैठेंगे, इधर सब कुछ में एक सेकंड रुक के देखेंगे सीट साफ है। कितना टाइम लगेगा देखने में कि सीट साफ है या नहीं है? जस्ट मुड़े, देखा, कुछ हो तो थोड़ा हाथ मारा और कुछ भी नहीं। अगर इतना सा ध्यान रखा तो पूरा दिन मोस्टली वो वाइट ही रहेगा। कई बार इतना ध्यान रखने के बाद भी कोई दाग लग जाता है, लेकिन क्योंकि प्रायोरिटी रखी है कि व्हाइट रखना है, तो जैसे ही दाग लगता है तो क्या करते हैं? तो 5 सेकंड निकालते हैं अपने काम से, दाग के साथ चलते नहीं हैं, क्योंकि प्रायोरिटी रखी है इसको व्हाइट रखना है। तो 5 सेकंड रुकते हैं, पानी लेते हैं, पानी से भी नहीं जाता तो साबुन लेते हैं, लेकिन रुककर उसको दाग को निकालते ही हैं, क्योंकि लक्ष्य रखा है रात तक व्हाइट रखना है। तो सारा दिन में कितना टाइम निकालना पड़ेगा उसको व्हाइट करने के लिए? ओवरऑल अगर आप चेक करो तो 12 घंटे में से आपको क्या लगता है कपड़े को व्हाइट रखने के लिए कितना टाइम निकालना पड़ेगा? और उतना सा टाइम निकालने से आपका सुबह से रात तक का व्हाइट व्हाइट रहेगा। और अगर ध्यान नहीं रखा तो क्या लगता है रात तक क्या हो जाएगी वाइट ड्रेस? तो चाहे वो कपड़े का वाइट है, चाहे वो आपके आभा मंडल की प्योरिटी का वाइट है, सिर्फ कुछ क्षणों का ध्यान रखना होता है और आप सुबह से रात तक हर रोज 365 दिन और अपना पूरा जीवन वाइट से वाइट से वाइट से वाइट, मतलब आप वही प्रोफेशन में रहते हुए भी अपनी वाइब्रेशन में कहां जा सकते हैं? ऊपर 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 ऊपर। अगर हम उसको क्या बनाते हैं अपनी, तो प्लीज अपनी डायरी में कैपिटल लेटर्स पे फर्स्ट पेज पे लिख ले, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, नॉट अबाउट टाइम। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, ताकि जिस दिन भी बोलोगे ना टाइम नहीं मेरे पास, तभी पढ़ लेना मैंने खुद को प्रायोरिटी नहीं रखा। अगर हम नई प्रायोरिटी रखें कि सफेद ड्रेस को सफेद रखना है, तो बहुत सारे दाग लग जाएंगे सारा दिन के अंदर, और हम कहेंगे इट्स ओके, दाग लगे तो लगे, क्या फर्क पड़ता है? तो इसका मतलब मेरे लिए वो प्रायोरिटी नहीं है उसको साफ रखना। लेकिन एक दिन दाग नहीं साफ करो कोई बात नहीं, दो दिन नहीं करो, एक साल नहीं करो, दो साल नहीं करो, 20 साल हो गए नहीं करो, और आपके आसपास तो दूसरे लोग आके अपने हाथ आपके ऊपर मल के जाते हैं ऐसे, राइट है कि नहीं? अभी हम लंच पे जाएंगे, किसी के हाथ पे अचार लगा है, किसी की सब्जी लगा, और चलते चलते ऐसे करके गया वो, तो क्या होगा? तो वो एनर्जी है किसी और की, लेकिन हम उसके संग के रंग में आ रहे हैं, तो उसका रंग हमारी वाइब्रेशन पे वो रंग लगना ही है। और फिर भी हमने उसको प्रायोरिटी नहीं रखा, तो कुछ साल के अंदर अगर एक ही ड्रेस पहनी रोज, तो क्योंकि एनर्जी फील तो एक ही है ना हमारे पास, कुछ साल के अंदर इसके अंदर शायद कुछ भी व्हाइट नहीं दिखाई देगा, और तब हम कहेंगे मुझे व्हाइट चाहिए। किस किस को शांति चाहिए और किस किस को खुशी भी चाहिए, एंड ये चाहिए मीनिंग आप कह रहे हैं मुझे व्हाइट चाहिए, क्योंकि व्हाइट के ऊपर क्या लग गया? दाग लग गए। किसके दाग लगे? किसके दाग लगे? पहले अपनी सोच के दाग लगे, फिर अपने वातावरण के दाग लगे, फिर अपने काम में जो भी शब्द आए, बातें आए, उसके दाग लगे, और इतने दाग लगे लगे लगे, अब तो ऐसा समय आ गया कि दुनिया में बोल रही है हमको खुशी चाहिए, तो आपको तो कितनी ही जरूरत लग रही होगी। लेकिन ये कपड़ा धोने में फिर भी बहुत टाइम लगेगा अगर वो बहुत मैला हो जाएगा, लेकिन एनर्जी फील्ड को क्लीन होने में टाइम नहीं लगता है। किसको कल यहाँ पे आने के बाद अच्छा लग रहा है, अच्छा फीलिंग आ रही है? अपने जहां से आए हैं वहां से थोड़ी डिफरेंट फीलिंग आ रही है। अच्छा, तो आप ये समझें कि जब आप यहां से मंडे को जाएंगे आपका कपड़ा फिर से वाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 3 दिन एक हायर एनर्जी फील्ड के अंदर हैं, आप 3 दिन मेडिटेशन कर रहे हैं, आप 3 दिन ज्ञान के शब्दों का उच्चारण सुन रहे हैं, आप 3 दिन मेडिटेशन की स्थिति में बना हुआ खाना खा रहे हैं, 3 डेज के अंदर यू आर गोइंग टू बी फीलिंग वेरी डिफरेंट। इसीलिए जो बहन ने स्टार्टिंग में कहा, कुछ भी मिस नहीं करना, योग लगे ना लगे आकर बैठ जाना, यहां पे नींद आ जाए नो प्रॉब्लम, सोए रहना, क्योंकि नींद में वाइब्रेशन और भी ज्यादा अब्सॉर्ब होती है, नींद में तो वाइब्रेशन और भी ज्यादा अब्सॉर्ब होती है, क्योंकि अपना कॉन्शियस माइंड तो साइलेंट हो जाता है, तो ब्लॉटिंग पेपर सीधा ले लेता है। तो ये मत बोलना पर मुझे तो नींद आई, नींद आई तो बहुत अच्छा, यहीं आके सोना लेकिन कमरे में नहीं सोना। आप सोचो यहां हॉल में क्या चल रहा है, ड्राई क्लीनिंग हो रही है इतने सालों की, तो बस आके बैठ जाना, धोबी अपना काम करता रहेगा, वो अपना काम करेगा, आप नहीं सोचना, आपको कुछ नहीं करना है यहां। आप सोचो मेरा मेडिटेशन नहीं हो रहा, नहीं हो किसका? आपको लगता है हम में से किसी का हुआ था क्या पहले 5 दिन में? 5 दिन क्या, 2 साल नहीं लगा था ठीक से? धीरे 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 धीरे, इट इज जर्नी। अभी भी कोई दिन गड़बड़ हो जाए तो अगले दिन सुबह नहीं लगेगा योग ठीक से, तो ये नहीं सोचना मेरा नहीं लग रहा, लगना भी नहीं है पहले दो तीन दिन के अंदर, तो पहले तो सिर्फ आकर उसके अंदर बैठना है। तीन दिन में अच्छे से सफाई होनी है, लेकिन डिसीशन लेना है मंडे को कि अब क्या, क्योंकि हर वीकेंड यहां आते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए। इट्स नॉट अबाउट यहां तीन दिन कैसा लगा, यहां बुरा लगने जैसा है क्या, कुछ भी नहीं है। तो अच्छा लगा तो नॉर्मल बात है, मंडे से क्या करना है, मंडे से क्या करना है। अब आपका कपड़ा मैला हो गया था, आप कहीं आपने समय निकाला, कपड़ा हो गया साफ, अब मंडे से क्या करना है। अब आप मंडे से प्रायोरिटी रखेंगे कि उस व्हाइट को व्हाइट रखना है, कौन कौन मंडे से ये प्रायोरिटी रखेगा। यहां कुछ नहीं करना है आपको, आपका रोल स्टार्ट होता है मंडे के बाद। क्यों? क्योंकि यहां हर वीकेंड मेहमान आते हैं, हर वीकेंड आते हैं, सबको अच्छा लगता है। मंडे को यहां से जाने से पहले कहते हैं हम कभी गुस्सा नहीं करेंगे आज के बाद, हम कभी टेंशन नहीं लेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि वो इतना वाइट फील कर रहे होते हैं, उनको लगता है ये तो परमानेंट है अब हमारा, इसके बाद तो हमें कभी गुस्सा आएगा ही नहीं। आपको लगता है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है? यहां किसी ने क्लेम किया स्टेज से कि आपको इसके बाद कभी गुस्सा आएगा नहीं? बिल्कुल भी नहीं। कईयों को तो एयरपोर्ट पहुंचने तक भी आ जाता है या स्टेशन तक, और फिर भी चार पांच दिन तक असर रहता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद इसका दाग, उसका दाग, आगे पीछे का दाग, वायुमंडल का दाग, फिर 15-20 दिन के बाद बोलते हैं आपका नेक्स्ट कब होने वाला है कॉन्फ्रेंस में, कि आपको क्या करना है उसके अंदर, अब इस बार नहीं, फिर से अगली बार कब जाना है, अब अगली बार तो आप नहीं जा सकते, अब अगली बार तो नए मेहमान आएंगे। सो आपका रोल स्टार्ट होता है मंडे से, और उसका डिसीशन आपको लेना पड़ेगा आज कि आप मंडे से अपनी लाइफ को कैसे प्रायोरिटाइज करने वाले। ये डिसीशन मंडे को नहीं लिया जाएगा। जैसे ही आप इस कैंपस के बाहर के वायुमंडल में गए तो उस वायुमंडल का असर आप पे शुरू हो जाएगा। टाइम नहीं है, बहुत काम है, किसके पास सुबह सुबह टाइम होता है ऐसे खाली बैठने के लिए, किसके पास टाइम है सुबह सुबह सेंटर जाने के लिए। जैसे ही आप उस हवा में जाएंगे उस हवा का असर आपके ऊपर उतना ही होगा जैसे इधर का असर हो रहा है। एंड टाइम नहीं लगता सोच को फिर से बदलने में, और उतनी देर में आप घर पहुंचेंगे, ये भी काम है वो भी काम है, ये हाँ ठीक है बाद में करेंगे, और थोड़े दिन में वो प्रायोरिटी में से कहां चला जाएगा और हम वापस अपनी सो कॉल्ड नॉर्मल लाइफ पे चले जाएंगे। एंड देन इट विल ओनली बी अ 3 डे नाइस हॉलिडे। तो हर साल ये हॉल, हर वीकेंड ये हॉल भरता है, हर वीकेंड यहां से वापस जाने के टाइम सब लोग डिसीशन लेते हैं, उसमें से एक बहुत छोटी परसेंटेज होती है जो उसको अपने जीवन बनाने जीने का तरीका बनाती है, बाकी सब के लिए वो एक अच्छा 3 डे का एक्सपीरियंस होता है। सो यू हैव टू टेक योर डिसीशन, लेकिन डिसीशन इस वायुमंडल में रहते हुए ही ले लेना कि मुझे वापस वैसे ही जीना है जैसे पहले जा रहे थे, विच इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन याद रखना क्योंकि कलयुग बहुत अपने अंतिम परिस्थितियों में है, आपके पास जो लोग आएंगे अब और जो परिस्थितियां आएंगी वो और ऐसे आने वाली है, क्योंकि आपके पास ही कलयुग आता है रोज। आपके पास क्या आ रहा है, जो समाज में हो रहा है वो आपके पास आ रहा है ना, तो आपके पास ही तो कलयुग रोज आ रहा है। तो जितना कलयुग नीचे जाएगा वो आपके पास ही सुबह से शाम आएगा, तो इसीलिए उससे अपने आप को बचाने के लिए अगर हम प्रायोरिटाइज कर लेते हैं इसको कि मेरी वाइब्रेशन मेरी टॉप प्रायोरिटी है, तो फिर क्या होगा, जो लोग आपसे मिलने आए हैं, आप देखो एनर्जी का प्रभाव एक से दूसरे पर तो पड़ता ही है, लेकिन अगर दोनों हाथ रखें फिर से ऐसे, ये आपका क्लाइंट है ये आप हैं, अगर हम दोनों सिमिलर वाइब्रेशन पे होंगे, मतलब वो टॉक्सिक हैं थोड़े लेकिन हम अपना स्ट्रेस वरी ये सब पे चल रहे हैं, तो भी हम नजदीक नजदीक ही हैं। अगर हम ऐसे होंगे तो उनका प्रभाव तो हम पर पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को ऐसे करेंगे तो फिर किसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, करिए, एनर्जी कहाँ से फ्लो होती है? फिर उसके बाद एनर्जी ऐसे नहीं फ्लो होती है। तो जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाते हैं, आपका इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब आपके आसपास कोविड होगा, मतलब फियर होगा, गुस्सा होगा, चीखना चिल्लाना, एंग्जाइटी होगा, लेकिन आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर दिया? ऊपर उठा दिया। कौन अपने आप को यहां रखना चाहेगा? और अगर आप अपने आप को यहां करेंगे, इनका प्रभाव तो आप पर नहीं पड़ेगा, लेकिन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो आपका प्रभाव उन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। आपसे मिलकर लोगों को शांति का अनुभव होगा, सिर्फ अच्छी राय नहीं मिलेगी, आपसे मिलकर उनके मन को शक्ति मिलेगी, आपसे मिलकर उनको अपनी परिस्थितियों की सिर्फ समाधान नहीं, परिस्थितियों का सामना करने की पावर मिल जाएगी। और इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ी सेवा, गर्मी हो तो पानी पिलाना सेवा होती है ना, ऐसे ही कलयुग के अंतिम समय में लोगों को अपनी वाइब्रेशन, सिर्फ अपना ध्यान रखने से लोगों को शांति और शक्ति की वाइब्रेशन रेडिएट करना, इससे बड़ी कोई सेवा हो सकती है? आपको लगता है आसपास दुनिया में लोग कह रहे हैं कि अभी तो देखो हॉल में ही सबने हाथ उठा दिया था, शांति चाहिए? तो जब हमारे आसपास सब लोग फील कर रहे हैं इट्स लाइक पानी चाहिए, पानी चाहिए, सब बोल रहे हैं पानी चाहिए, तो आप पानी पिलाएंगे या आप भी उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे पानी चाहिए? कौन सी साइड पे खड़े होना है, पानी चाहिए या पानी पिलाने वाले हैं? होगा तो पिलाएंगे। तो जिसने प्रायोरिटाइज किया सेल्फ केयर, उसके पास हो गया। और हमें पिलाना मतलब हमें कुछ देना नहीं है, आपकी वाइब्रेशन जस्ट रेडिएट कर रही है आपसे दूसरों को। अब कौन अपने को प्रायोरिटी रखने के लिए रेडी है? दुनिया में लोग कहते हैं मेरे लिए, अपने लिए तो समय बिल्कुल नहीं है, बोलते हैं ऐसे कि नहीं? इतना तक कहते हैं मरने के लिए भी टाइम नहीं है, सोचते भी नहीं है, टाइम थोड़ी पूछ के आता है हमारे लिए। आज आप अपनी डायरी में लिखना, मेरे पास सबसे पहला टाइम अपने लिए है। इट्स ओनली प्रायोरिटी विच हैज टू गो राइट। सेल्फ मतलब आत्मा, सेकेंड प्रायोरिटी बॉडी, थर्ड प्रायोरिटी फैमिली, फोर्थ प्रायोरिटी वर्क, एंड फिफ्थ प्रायोरिटी वर्ल्ड, दुनिया, समाज। मैं, सेल्फ, आत्मा, फिर मेरा शरीर, फिर मेरा परिवार, फिर मेरा काम, फिर मेरी दुनिया। क्या ये ठीक है ऑर्डर? ये ऑर्डर ठीक लग रहा है? लग रहा है ऑर्डर ठीक या नहीं लग रहा? किस किस को ठीक लग रहा है ऑर्डर? किसकी लग रहा है नहीं ठीक, नहीं चेंज करना है कुछ तो बताइए, चेंज करें। हाँ जी बताइए, चेंज करते हैं, चेंज करना है कुछ? नहीं नहीं बताइए, हर आंसर राइट है यहां पर, आप सिर्फ बताओ कुछ चेंज करना, बताइए। ठीक है, एनीबडी एल्स कुछ चेंज करना जी? बताइए। सेल्फ बॉडी, सेल्फ मीन सोल ओनली, वो दो अलग अलग नहीं है। आत्मा, शरीर, परिवार, काम, दुनिया। ओ नहीं नहीं, फैमिली एब्सोल्युटली, ये अपने आप होगा, करना कुछ भी नहीं है। आत्मा, मैं आत्मा बीज हूं, बीज का सबसे पहला असर किस पर पड़ता है? आप यहां स्ट्रेस्ड होते हैं, सबसे पहले असर किस पर पड़ता है? बॉडी पर। आप यहां थोड़ा सा टाइम निकालेंगे इसको शांत करने के लिए, सबसे पहला बेनिफिट किसको मिलेगा? बॉडी को। आज लोग क्या कर रहे हैं? बॉडी का ध्यान रख रहे हैं आजकल सबने, क्योंकि इतनी बीमारियां फैल गई हैं, कोविड के बाद बीमारियां भी बढ़ गई हैं, तो हम शरीर का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन यहां से वही स्ट्रेस, वही चिंता, वही वो, तो फिर से यंग हार्ट अटैक्स, फिर कैंसर, फिर ये इतना सब बढ़ गया। दवाई भी असर नहीं करती। क्यों दवाई नहीं असर करती आप सोचिए, दवाई क्यों नहीं असर करती? अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दर्द हो रहे हैं, दवा असर नहीं करती। आजकल एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बॉडी में लोगों को बहुत दर्द हो रहा है लेकिन मेडिकली कोई बीमारी नहीं है, तो वो दर्द कहां से रेडिएट हो रहा है बॉडी के अंदर? तो जब दर्द का ओरिजिन ये होगा ना, तो दवा इस पर असर नहीं करेगी। लेकिन पता है कौन सी चीज असर करती है? दुआ असर करती है, और दुआ मतलब हाई एनर्जी वर्ड्स। तो जैसे ही यहां की सोच बदलेगी, आपकी सोच दुआ की भाषा हो जाएगी, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, यू आर गुड, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हम अपनी वोकैबुलरी को चेंज करेंगे, मतलब हमारी शब्द जो है, हमारी जो सोच है वो दुआ बनती जाएगी। जैसे दुआ बनती जाएगी दर्द खत्म होता जाएगा, और जैसे दर्द खत्म होता जाएगा शरीर के अंदर का दर्द खत्म होता जाएगा। आप इस 3 दिन के अंदर देखना, आपको यहां फिजिकली बेटर फील होने वाला है। आप इस 3 दिन में देखना, आपकी नींद की क्वालिटी बेटर होने वाली है। क्यों नींद की क्वालिटी बेटर होने वाली है? क्योंकि यहां माइंड इज डिफरेंट। किस किस को गहरी नींद नहीं आती रात को घर पे? किस किस को सुबह उठने के बाद थोड़ा सा और सोने का मन करता है? क्यों सोने का मन करता है इतने घंटे सोने के बाद? क्योंकि नींद में भी वही बातें चलती हैं हमारी सबकॉन्शियस के अंदर। आप दिन में नहीं, आप रात को भी अपने शरीर को वही शब्द देते हैं। तो बीज को पानी दीजिए, यहां को अच्छा कीजिए, ये अपने आप होने लगे। ऑफकोर्स अलोंग विद राइट ईटिंग एंड एक्सरसाइज, यस। लेकिन जब तक सोच सही नहीं, शरीर सही नहीं चल सकता। क्योंकि हर थॉट, यहां उंगली रखो, यहां का असर किस किस पर पड़ता है? हर थॉट एक वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन सबसे पहले किसको मिलेगी? आपको लोगों की वाइब्रेशन फील होती है, जगह की वाइब्रेशन फील होती है, तो वो आपको दूसरे की वाइब्रेशन फील हो रही है, दूसरे को आपकी वाइब्रेशन फील हो रही है, लेकिन सबसे पहले आपका शरीर आपकी वाइब्रेशन को फील करता है। तो इसीलिए आत्मा का असर किस पर पड़ा? शरीर। फिर आत्मा का इमीडिएट कनेक्शन किसके साथ है सबसे ज्यादा? फैमिली। तो यहां पे पीसफुल हो जाएंगे, रिश्ते बेटर हो जाएंगे। पीसफुल एंड हैप्पी होंगे, सहन शक्ति बढ़ जाएगी, टॉलरेंस पावर बढ़ जाएगी, बात को 1 सेकंड में खत्म करने की शक्ति आ जाएगी। कोई कुछ बोलेगा तो चुप रहेंगे, लेकिन जब यहां स्ट्रेस होता है तो रिएक्ट करते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, छोटी बात को खत्म नहीं कर पाते, बातों को भूल नहीं पाते, तो फिर रिश्ते क्या हो जाएंगे? रिश्तों में गांठें पड़ेंगी, तो नेक्स्ट स्टेज फैमिली अफेक्ट हो जाती है, और परेशान मन और बीमार शरीर, मतलब बीमार मतलब कुछ ना कुछ ऊपर नीचे, और फिर घर पे झगड़े, ये तीनों चीजों के साथ जब आप काम पर जाएंगे, आर यू द बेस्ट वर्जन एट योर वर्क? आज लोग ये कर रहे हैं, कहते वर्क इज प्रायोरिटी, तो उन्होंने वर्क को नंबर 1 अपनी लिस्ट पर डाला, मन का ध्यान नहीं रखा, शरीर पर उसका असर पड़ा, घर में झगड़ा वगड़ा हुआ, झगड़ा छोड़ के चले गए, ऑफिस में चले गए, बैठे तो ऑफिस में हैं लेकिन बेस्ट एनर्जी वर्क को नहीं दे रहे। तो जिसने भी वर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, वो कह रहा है मुझे वृक्ष का ध्यान रखना है लेकिन बीज को पानी देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और क्योंकि दुनिया में आज लोग सब लोग वृक्ष को धो रहे हैं बिना बीज को पानी दिए, दे आर ऑलवेज बिजी। जो ट्री को धोएगा उसको टाइम मिलेगा कभी अपने लिए? अगर आप वृक्ष को पत्ते 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 को धो, आपको टाइम मिलेगा कभी? आप इधर का धोएंगे, इधर आएंगे तो ये सूख जाएगा, इधर जाएंगे तो ये सूख जाएगा, क्योंकि मेरे पास कभी टाइम ही नहीं है। आप आज की डेट लिख के रखना, आप 3 महीने इस लाइफस्टाइल को फॉलो करना। हम आपको लाखों लोगों के अनुभव से कहते हैं, जब हम यहां से वापस जाते हैं, हम सब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सट्रीमली बिजी होते हैं। जब हम यहां से जाते हैं तो हमें सेंटर की दीदी कहती है, अब आप सेंटर आया करना, क्योंकि सेंटर इज सेम वाइब्रेशन एज दिस। आप कितना भी घर पे मेडिटेट कीजिए, आप कितना भी सात्विक खाना खाइए, एक चीज जो हमें रोज चाहिए एनर्जाइज होने के लिए, वो है हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जो किसी और ने क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो वो सेंटर पर मिलती है। तो जब हम लोगों को बोलते हैं आप आया करो सेंटर पर, चाहे 15 मिनट आओ, आधा घंटा आओ, हम सब तो 1 घंटा जाते हैं, हमारी तो डेली रूटीन 365 days ऑफ द ईयर। और सारे जो सेंटर पर आते हैं, आप अपने नजदीक के सेंटर पर जाके देखेंगे, सारे जो सेंटर पर आते हैं वो आपकी तरह बहुत बिजी हैं, मतलब बहुत काम कर रहे हैं, फैमिली संभाल रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 1 घंटा अपनी प्रायोरिटी रख दी। अब जब वो पहली बार 1 घंटा अपनी प्रायोरिटी रखते हैं ना, बहुत उथल पुथल होती है घर के अंदर, मतलब कैसे फिट करें, कैसे 1 घंटा निकालें, सुबह खाना बनाएं, ये करें, तो इनिशियली इफ यू हैव टू टेक आउट 1 आवर देयर विल बी लॉट ऑफ शफलिंग, ऐसा तो शुरू शुरू में लगता है ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे होने लगता है। शुरू में पहला 1-2 महीना टाइम निकालना पड़ता है, 1-2 महीने के अंदर वो हमारी रूटीन के अंदर फिट हो जाता है, 3-4 महीने के अंदर हम उस 1 घंटा निकालने से बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, 6-8 महीने के बाद वही लोग जो 8 महीने पहले बोल रहे थे हमारे पास टाइम नहीं है, उसके बाद वो सेंटर पर जब आते हैं तो कहते कोई सेवा है क्या सेंटर पे, बताओ हम भी करें, तो हम कहते नहीं आपको कोई सेवा नहीं करनी, आपको काम करना है, घर संभालना है, बस उतना काफी है, और आप अपने स्टडी के लिए आना है, तो कहते नहीं अभी हमारे पास टाइम है। और कहां से आया टाइम, टाइम कहां से आया, कहां से टाइम आया, काम तो उतना ही है, टाइम भी 24 घंटे ही है, जिसके पास टाइम नहीं था मरने के लिए, उसके पास अनजान लोगों की सेवा करने के लिए टाइम कहां से आया, उससे टाइम कहां से आया। एक दिन अभी आप विजुअलाइज करें, अभी इसको फील करें, आपके शरीर तबीयत ठीक नहीं है, बहुत वीकनेस है, बहुत पेन है, पैर में चोट भी लगी है, और आपको अपने सारे काम करने हैं, तो सारे काम थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी या नहीं होगी, हो जाएगी ना स्पीड कम, लेकिन आप उस दिन ये नहीं बोलते टाइम नहीं, आप बोलते हो मैं कमजोर हूं, लेकिन जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा मैं यही काम कैसे करूंगा, भाग 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 भाग। इसी तरह जब ये आत्मा रूपी बैटरी कम होती है ना, माइंड वीक, वीक मतलब थका हुआ, विद पेन अपने सारे काम कर रहा होता है, हमें पता नहीं चलता है कि हम नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगा रहे हैं हर काम करने के लिए, और जैसे ही ये माइंड ईज आउट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ये इतनी सारी जो व्यर्थ की सोच करता था वो बंद हो जाता है, और फटाफट से सही सोच करता है और फुल स्टॉप करता है बाकी सारी बातों को, यहां इतनी एनर्जी बच जाती है, डिसीजन मेकिंग फटाफट होने लगती है, वेस्ट की बातों के लिए तो टाइम रखते ही नहीं, बिकॉज वो हमारा कर्म गलत बन रहा होता है। जैसे ही ये होता है आपके पास सडनली एनर्जी नहीं है एक्स्ट्रा, आपके पास सडनली एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है, बिकॉज एक्चुअली इट नेवर वॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम, इट वॉज ओनली शॉर्टेज ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ। बीज को पानी नहीं दे रहे थे, वृक्ष को धो रहे थे, थक जाते थे दिन के एंड पे। बीज को पानी देने में कितना टाइम लगता है, बीज को पानी देने में कितना टाइम लगता है। आज आप इस कैंपस में हैं, 3 दिन इस कैंपस को अच्छे से देखना, ये कॉन्फ्रेंस आपके भी शहर में हो सकती थी लेकिन ये वहां नहीं हो रही है, आपको यहां बुलाया गया है 2 चीजों के लिए जो वहां नहीं हो सकती। एक, ये वाइब्रेशन आपको वहां नहीं मिल सकता। दूसरा, आपको यहां रहकर देखना है कि मेडिटेशन आश्रम मतलब ये नहीं ऐसा खाली बैठे सारा दिन मेडिटेशन करते हैं, सुबह से रात तक 365 दिन 365 days नॉन स्टॉप, ना कोई संडे, ना कोई दिवाली, ना कोई त्योहार, मतलब त्योहार है पर उसमें और भी सेवा है, कोई ऐसा दिन जहां यहां के भाई बहनों को मिले आज छुट्टी है, किसी को भी जाके पूछना आपको लास्ट छुट्टी कब मिली थी यहां पे, किसी को किसी पे भी जाओ उंगली रखो बोलो भैया आपको लास्ट छुट्टी कब मिली थी यहां पे, वो बोलेंगे पता नहीं 25 साल तो हो गए उनको यहां पे रहे थे, आपको उनके चेहरे थके हुए दिखाई देते हैं या हैप्पी दिखाई देते हैं? आप जाएंगे ट्यूसडे को, एक दिन मिलेगा बीच में, वेडनेसडे को सारे बिस्तरे ठीक होंगे, किचन ठीक होगा, ये ठीक। थर्सडे से नेक्स्ट, वो भी ट्यूसडे को जाएंगे, एक दिन वेडनेसडे मिलेगा, थर्सडे को नेक्स्ट। 365 डेज ऑफ द ईयर दिस इज द कैलेंडर। सुबह कितने बजे उठते हैं यहाँ के भाई बहने सारे? आपने सुना ना गाना कितने बजे बजता है उठने का? 3:30 बजे। सोते कितने बजे हैं? सैलरी कितनी मिलती है सबको? ये सब पूछना सबको, किसी के पास भी चले जाना, कहीं भी, जस्ट गो टू एनीबडी। सैलरी नहीं मिलती, काम खत्म नहीं होता, छुट्टी नहीं मिलती, प्रमोशन नहीं मिलती, परिवार भी साथ में नहीं रहता है, अनजान लोगों के साथ एक कमरे में रहना पड़ता है, जो सब खाना खाएंगे वही खाना खाना पड़ता है, जो सब पहनेंगे वही पहनना पड़ता है, और फिर भी चेहरे पे खुशी है। इसका मतलब खुश रहना कितना आसान है, और हम अपनी दुनिया में जितना चाहें उतना कमाएं, जितना चाहें वो खरीदें, जब छुट्टी चाहें करें, जैसा जीना है, अपने छोटे से परिवार के साथ रहते हैं, और फिर भी आज हम हाथ उठा रहे हैं कि मुझे खुशी चाहिए। आपको क्या लगता है इतने सारे लोगों के साथ रहना आसान होता है? हमारे घर में कितने लोग रहते हैं? घर में कितने लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं घर में? 2, 4, 5। इस कैंपस में 150 भाई रहते हैं, एक एक कमरे में 5-6 भाई इकट्ठे रहते हैं, अनजान, कोई रिश्ता नहीं है एक दूसरे के साथ। कोई किस शहर से आया, कोई किस शहर से आया, कोई किसी का एकेडमिक बैकग्राउंड कुछ है तो, कोई तो स्कूल भी नहीं गया है। टुगेदर 365 डेज ऑफ द ईयर 24 आवर्स टुगेदर, आसान है? हम तो सुबह सुबह निकलते हैं घर से, शाम को आते हैं, सोते हैं, सुबह फिर निकल जाते हैं, फिर भी झगड़े होते रहते हैं। तो अगर ये सब यहां रह सकते हैं, वहां रहना तो बहुत आसान है। लोगों को लगता है आश्रम में रहना तो बहुत आसान है, हम बोलते हैं आप आके रह लो कल से, नो प्रॉब्लम, रह के दिखाओ। इट्स नॉट ईजी टू लिव लाइक दिस, इट इज नॉट ईजी। लेकिन वाय आर दे ऑल्सो हैप्पी? क्योंकि वो रोज सुबह सेवा करने से पहले पहले बीज को पानी दे रहे, बस ओनली दैट मच। उन्होंने बीज को रोज सुबह पानी देना है, और सारे दिन की प्रायोरिटी है वाइट को वाइट रखना है। तो इतने सब रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है टक्कर नहीं होगी, संस्कार इसका उसका मैच नहीं करेगा, किसी की राय दूसरे के साथ मैच नहीं करेगी, सारा दिन हो रहा है वो सब कुछ, लेकिन प्रायोरिटी रखिए। अच्छा, इसने ऐसे बोला, मैंने को गलत सोचा, फटाफट से चेंज, ब्लेसिंग दो, कार्मिक अकाउंट को ठीक करो, प्रायोरिटी है, दाग लगा फटाफट से वाइट करो उसको वापस। तो आपको यहां इसलिए बुलाया है सो दैट यू सी कि अगर 150 कुमार, ये भाई है यूथ, अगर 150 यहां रह सकते हैं विदाउट सैलरी एंड बीइंग हैप्पी, तो हमारे लिए वहां हैप्पी रहना आसान है या मुश्किल है? बताइए, आसान है या मुश्किल है? अच्छे से बोलो, जो शब्द बोलेंगे वही होगा, बोलो। वहां तो बहुत आसान है। अच्छा, इतने से बोलेंगे ना तो नहीं होगा, अच्छे से बोलना पड़ता है, सब कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होना होता है। कैसा है वहां? बहुत आसान है, बस ये वोकैबुलरी को यहां से पक्का करके जाना है। इसीलिए यहां सबसे मिलते रहना, सबसे बात करते रहना, जहां जाओगे भाइयों से मिलो, भाइयों से बात करो, ठीक है? करेंगे ऐसा? कौन कौन करेगा? डाइनिंग हॉल में जाओगे, आपको बहनें मिलेंगी, माताएं मिलेंगी, वो यहां नहीं रहती हैं, वो आपके प्रोग्राम के लिए सेवा पर आए हैं, यहां पर अपना घर छोड़कर आए हैं। उनसे पूछो आप सेंटर क्यों जाते हो, वहां पे क्या फायदा होता है। टॉक टू एवरीबडी, ऐसा नहीं हम सिलेक्ट करके लाएंगे, आप इनका एक्सपीरियंस सुनो ना, आप किसी को भी पूछो जाके ओपन। बट उसके बाद ये लेकर जाओ कि अगर ये कर सकते हैं तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट प्रायोरिटाइजिंग टाइम। तो हमने प्रायोरिटी क्या रखनी है, हमें बीज को क्या करना है, पानी देना है। कौन है बीज? ये मैं, आत्मा। आज सुबह हमने देखा आत्मा के गुण कौन से हैं, 7। 7 ओरिजिनल संस्कार. सुबह सुबह के सेशन में कौन था आज मॉर्निंग 6:30 सुबह? एक भी दिन मिस नहीं करना है. हमारे ओरिजिनल 7 संस्कार कौन से हैं? प्योरिटी नहीं, ऑर्डर में चलना होता है. जब तक फर्स्ट नहीं होता ना तो सेकंड नहीं आता. फर्स्ट संस्कार प्योरिटी, लिखते जाए. ऑर्डर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जो हम 7 संस्कार लिखेंगे, दैट यू हैव टू मेक इट योर वोकैबुलरी. आई एम अ फिल इन द ब्लैंक, वो वाला संस्कार. आत्मा, मैं पवित्र आत्मा हूं. सोचेंगे बोलेंगे दाग साफ होते जाएंगे. आई एम अ प्योर सोल. सेकेंड, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं. आई एम अ पीसफुल सोल. तीसरा, जब पवित्रता होगी, शांति होगी, तो प्यार की वाइब्रेशन अपने आप हमारे से दूसरों को रेडिएट होगी. मतलब मेरा मन चित साफ होगा तो मेरे से शुद्धता अपने आप दूसरों को जाती है. दैट लव इज रिस्पेक्ट, लव इज केयर, लव इज कंपैशन. तो आई एम अ लवफुल सोल, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं. और जब ये होगा तो मैं आत्मा हमेशा खुश रहूंगी. तो मैं आई एम अ हैप्पी सोल, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं. और जितनी ये शक्तियां मेरे अंदर बढ़ती जाएंगी तो आत्मशक्ति बढ़ जाएगी. आई एम अ पावरफुल सोल. पावरफुल सोल मतलब माइंड पर पूरा कंट्रोल. व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट्स, टॉक्सिक थॉट्स कुछ भी नहीं. आई एम अ पावरफुल सोल. और जब मन चित इतना साफ हो जाता है, आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है, तो किसी भी प्रश्न का जवाब बाहर से किसी से नहीं लेना पड़ता है. विजडम, इंट्यूशन, वो नॉलेज है. मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं. इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है. कौन से गुण की? इंट्यूशन. इन दो चीजें हैं जो मेडिटेशन से बहुत ज्यादा बढ़ती हैं. एक है इंट्यूशन और दूसरा है परमात्मा की टचिंग. मतलब एक है मेरी अपनी इंट्यूशन कि ये मेरा थॉट आया सुबह सुबह मुझको आज ऐसे टक करके. इंट्यूशन तो बहुतों को आता है. किस किस को आता है इंट्यूशन? किस किस को कम कम आता है? ज्यादा आना चाहिए. किसको लगता है मेरा बढ़ना चाहिए इंट्यूशन? मतलब पता है क्या होगा? आपको सामने वाला कुछ कह रहा होगा बट आपको आंसर दूसरा पता होगा कि ये नहीं ये है. क्योंकि आप उसके शब्द नहीं, आप उसके शब्द के पीछे की वाइब्रेशन को फील करना शुरू कर देंगे. इस समय हम वाइब्रेशन को फील नहीं करते लोगों को. हम लोगों को सिर्फ वो जो दिख रहे हैं और जो बोल रहे हैं और उनका विजिटिंग कार्ड जो बोल रहा है बस उसी के बेसिस पे देखते हैं. और इसीलिए हम कई बार धोखा खा लेते हैं. फील द वाइब्रेशन ऑफ पीपल. सो व्हेन यू प्रायोरिटाइज योर वाइब्रेशन यू विल स्टार्ट फीलिंग पीपल्स वाइब्रेशन. जैसे देखो, किसी को कपड़ों का बहुत शौक हो, उसको सबके कपड़े ही पहले दिखाई देंगे क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या है? कपड़े. किसी को बैग बहुत अच्छा लगता है, वो बाद में आपने उनका बैग देखा तो मैं बोलूंगी नहीं मैंने तो नहीं देखा, कौन सा बैग था? तो कहेगा आपने बैग कैसे नहीं देखा? मैंने कहा बैग कौन सी चीज होती है किसी का देखने वाली? लेकिन जिसको बैग का शौक होगा उसका ध्यान किधर जाएगा? उसको दूसरे के बैग पर ही जाएगा. जिसको जूते का शौक होगा उसके दूसरे के जूते पर ही दूसरों का नहीं जाएगा बिकॉज इट्स नॉट प्रायोरिटी. जैसे ही वाइब्रेशन बिकम्स योर प्रायोरिटी, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा. आप सीधा बोलेंगे इनसे मिलकर मुझे फील कैसा हुआ, इनकी वाइब्रेशन क्या थी. या जब ये कह रहे थे बात, इनकी वाइब्रेशन क्या थी उस समय? क्योंकि जब हम सोच कुछ और रहे होते हैं और बोल कुछ और रहे होते हैं, हम दो एनर्जी रेडिएट करते हैं. अगर मैं आपसे बोलूं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं अंदर से सोचूं आपसे मिलकर मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो मेरी दो एनर्जी आपको जाएगी. अब आपको परखना है नहीं तो धोखा खा लेंगे. तो आज से अपनी प्रायोरिटी को वाइब्रेशन बनाना है, अपनी भी दूसरों की भी. कपड़े वपड़े नहीं देखना है, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है. जस्ट एक बार मिलो किसी, बोलो व्हाट वाइब्रेशन डू आई फील मीटिंग दिस पीपल. जब कोई कुछ बोल रहा है बोलो ये एक्चुअली सोच क्या रहे. जस्ट गिव योर माइंड दिस इंस्ट्रक्शन कि व्यक्ति अंदर सोच क्या रहा है इस टाइम. जैसे आपने बोला आपको फीड मिल जाएगी उधर से. लेकिन हम सिर्फ बोलते हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो सिर्फ बोल क्या नहीं रहे, वो सोच क्या रहे हैं, ये मुझे पता करना है। जस्ट टैप इन एंड वो एनर्जी आपके पास आ जाएगी। तो जितना हम रोज अपने को वाइट रखेंगे, अपना मैल नहीं होगा, तो हमारी वाइब्रेशंस क्लीन होंगी, तो हमें वाइब्रेशन कैच होनी शुरू हो जाएगी। पहली चीज, हमारे को अपनी विजडम कैच होनी शुरू हो जाएगी। कोई चीज साफ होती है तो ही नीचे पड़ी हुई चीज दिखाई देती है। इवन पानी साफ है, स्थिर है, तो नीचे पड़े हुए मोती दिखाई देंगे। अगर पानी उथल पुथल है और मैला है, मोती होंगे नीचे लेकिन दिखेगा कुछ भी नहीं। तो विजडम, हर आंसर हमें पता है, वो है आत्मा के पास, लेकिन ऊपर स्ट्रेस, एंगर, ये सब है ना, तो वो इंट्यूशन टैप नहीं होती है। तो जितना मेडिटेशन करेंगे आपकी इंट्यूशन बढ़ती जाएगी। आपको ऐसे पता होगा ये आंसर राइट है, ये करना है, ये नहीं करना है। कलयुग के अंतिम समय में जब चीजें अनसर्टन होंगी, लॉजिक से काम करना हमेशा राइट नहीं होगा, क्योंकि जो आज लॉजिकली राइट है वो कल राइट नहीं होगा, परिस्थिति बदल जाएगी। इसीलिए समय आ गया है, और स्पेशली अब जो दुनिया आने वाली है जिसमें हमने अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट किसी चीज को बना लिया है, तो उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस की वैल्यू तो हमें लगता है हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। नो, हमारी वैल्यू कम नहीं होगी, हमारी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जहां हर तरफ इंटेलिजेंस 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 है, वहां ह्यूमैनिटी की जो इंट्यूशन है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जहां लॉजिक हर जगह है, वहां वाइब्रेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। नाउ इट विल नॉट बी द इंटेलिजेंस विच विल बी वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि वो आंसर तो मुझे एक इंस्ट्रक्शन देके मिल जाएगा, लेकिन इट विल बी योर वाइब्रेशन, आपकी इंटेंशन, आपकी इंट्यूशन। वो मुझे कोई मशीन नहीं दे सकती। वो मुझे कोई मशीन दे सकेगी? नहीं। लोग आजकल कहते हैं डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो AI आंसर कर देगा, ये है वो है। हम डॉक्टर के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने नहीं जाते हैं। जब डॉक्टर हमारा हाथ ऐसे पकड़ता है, कहते हैं अरे इतना सही है, कुछ नहीं है, तुम दो दिन में ठीक हो जाओगे, उसकी जो वाइब्रेशन रेडिएट होती है वो हमारे दर्द को, हमारे डाउट को, हमारी एंग्जाइटी को क्या करती है, हम उसके कमरे से बाहर आते हैं डॉक्टर के, चले कोई बड़ी बात नहीं है तो परफेक्ट ठीक हो जाएगा। मशीन ये नहीं कर सकती है। मशीन एक कंप्यूटर की जेनरेटेड भाषा में बात करेगी सिर्फ। इसीलिए ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है अपनी वोकैबुलरी को अब क्या बनाना है, अपनी वोकैबुलरी को क्या बनाना है, हायर वोकैबुलरी। क्योंकि वो लोअर एनर्जी एक्चुअल इंटेलिजेंट वर्ड्स वो तो कंप्यूटर भी बता देगा, लेकिन ऐसे वर्ड्स बोलने हैं जो सामने वाले को शक्ति मिल जाए। तो इस समय जो एक्सेल करेगा, एक युग था जो पिछले 100 साल बीते, वो IQ का युग था, वो IQ का ही युग था। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आपके संस्कार कैसे हैं, कुछ फर्क नहीं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप काम में बहुत अच्छे हैं, सक्सेसफुल। अब जो युग आएगा वो किसका होगा? IQ का युग था, लेकिन अब इंटेलिजेंस तो किसी और की आ गई है, तो अब कौन सा युग आ जाएगा? अब वो EQ का युग आ जाएगा, कि इमोशनली आप स्ट्रांग होने चाहिए, देन यू आर सक्सेसफुल। तो इसीलिए पहले नहीं भी प्रायोरिटाइज किया तो अब प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर मैंने सिर्फ कहीं से पढ़ के बोल के सुनाना है तो वो कंप्यूटर ही उनको सुना देगा, लेकिन मेरी वाइब्रेशन से सामने वाले को सुख मिलेगा, सामने वाला मेरे पास आएगा, ये याद रखना है। अभी IQ नहीं, अभी EQ का योग आएगा। तो इसलिए इंट्यूशन को बढ़ाना है। और दूसरी चीज जो बहुत बढ़ती है, जब हमारा परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है, आप कल सीखेंगे कि परमात्मा कौन है, परमात्मा से कैसे कनेक्शन जोड़ना है। तो जब हमारा परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है तो हमारा परमात्मा के साथ टेलीपैथी होना शुरू हो जाता है। आप में से किस किसने टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया है? आपने किसी को याद किया, उसने कुछ बोल दिया, उसने फोन कर दिया, ये सब होता है ना। तो जैसे दैट इज कॉल्ड आत्मा का आत्मा से टेलीपैथी। आपने एक थॉट क्रिएट किया, दूसरे वाले तक वो पहुंच गया, आपने सोचा था उसको फोन करेंगे। जैसे कई बार होता है, हम कहते हैं आज उसको फोन करना है, और वो हमारे माइंड पे चल रहा होता है, आज उसको फोन करना है, आज उसको फोन करना है, बट अभी ये काम कर लें फिर उसको फोन करते हैं, ये फाइल पूरी कर लें फिर उसको फोन करते हैं। तो हम 10 बार सुबह से ये थॉट क्रिएट कर चुके होते हैं कि आज उसको फोन करना है। तो वो थॉट कहां पहुंच जाती है? वो थॉट उनको पहुंच जाती है और उनके अंदर ये थॉट आती है आज उनको फोन करना, और उनका फोन आ जाता है और फिर हम उनको बोलते हैं आज हम सुबह से सोच रहे थे कि आज आपको फोन करना है। That is called catching, कि उन्होंने हमारी thought को क्या कर लिया, catch कर लिया। तो अगर हम मनुष्य आत्मा की thought को catch कर सकते हैं, क्या हम परमात्मा की thought को भी catch कर सकते हैं? क्या हुआ, catch कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर हम परमात्मा की थॉट को कैच कर सकते हैं तो क्या परमात्मा भी हमारी थॉट को कैच कर सकता है? तो अगर हम परमात्मा को क्वेश्चन भेजेंगे क्या वो हमें आंसर दे सकता है? यस और नो? किस तरह का क्वेश्चन देंगे आप उसको? हम परमात्मा के सामने क्वेश्चन रखते हैं, पर जिस दिन लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, उसी दिन रखते हैं जाके। अब आप प्रैक्टिस शुरू करना, यहां से छोटी छोटी बात बोलते रहना, छोटी छोटी बात बोलते रहना, हर छोटी छोटी बात बोलते रहो, हर छोटी छोटी बात बोलते रहो। जब छोटी छोटी बात बोलते बोलते कनेक्शन बनता जाएगा, रिश्ता बनता जाएगा, बड़ी बात बोलनी नहीं पड़ेगी, बोलने से पहले आंसर मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ क्या करना है, उसके साथ क्या बनाना है? हमारे लिए इस समय भगवान एक बहुत दूर की एक शक्ति है, वो पावर है। उसके साथ छोटी छोटी बातें नहीं की जाती, उसके साथ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती है। लेकिन परमात्मा हमारा पेरेंट है, परमात्मा हमारा दोस्त है, तो उसके साथ कौन सी बातें करनी होती है? कौन सी बातें करनी है? कौन सी बातें करनी है? हर बात करनी है, हर छोटी छोटी बात करनी है। तो जब आप सेंटर पर आएंगे, आप धीरे धीरे ज्ञान की बातों को और गहराई से सुनेंगे, सबसे ब्यूटीफुल और पावरफुल चीज जो होगी वो होगी परमात्मा के साथ एक पर्सनल कनेक्ट। पर्सनल मतलब वेरी वेरी पर्सनल। Absolutely. सुना सबने? उन्होंने बोला किचन में कुछ नहीं भी मिल रहा होता तो मैं उसको कहती हूँ प्लीज ढूंढो ना किधर है, और 3 सेकंड में मेरे सामने वो चीज होती है। एंड ये सबका एक्सपीरियंस है। उल्टा अब तो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि ढूंढने में टाइम ही नहीं लगाते। क्यों टाइम लगाना जब कोई है बताने के लिए कि कहाँ पड़ा हुआ है? तो हम तो बोल देते वो चीज मिल नहीं रही, मैं अभी ये काम करूँ तब जब ढूंढनी तो पता। एंड हाउ इट हैपन्स इज कि आप एक्चुअली उस चीज के सामने पहुंच जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है खुद ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं, घंटों बीत गए, 10 दिन बीत गए, नई चीज मिली। मतलब आपके लॉजिक माइंड ने हर पॉसिबल जगह ढूंढ ली वो चीज कहां पड़ी थी, एंड फाइनली आप हार गए और कहा मुझे वो चीज नहीं मिल रही है, वो बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के अंदर वो सामने, लाइक हाउ डिड आई नॉट सी दिस? दिस इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन लॉजिक and intuition and catching and touching power. तो किसको बनाना है ऐसा रिश्ता उसके साथ? आपको बताया आपके केस के बारे में भी आप बात कर सकते हैं उसके साथ, ये और ये है। आप बता दो सच्ची में क्या हुआ था एक्चुअली वो क्राइम के दिन पर, वो बता देगा आपको। थोड़े दिन पहले मैं सेंटर पे थी, एक बच्चा था, कहता है वो हम प्यार से भगवान को बाबा कहते हैं, निराकार परमात्मा है लेकिन वो हमारा पेरेंट है तो हम उसको बाबा कहते हैं। बाबा मतलब मेरा फादर, मेरा पेरेंट। तो मेरे को कहता है वो बच्चा, बाबा ना मेरे सारे काम करता है। मैं को तेरे काम ही कौन से जो बाबा ने करने, बताओ, इतना सत्य तू है। कहता है आपको पता है क्या हुआ, लास्ट वीक मैं एग्जाम दे रहा था, मुझे एक आंसर ही नहीं आ रहा था, मेरे को आ ही नहीं रहा था, तो मैं रुका और मैंने कहा बाबा आपको तो कोई नहीं देख सकता है। मैं कहा ऐसे बोला? हाँ। कहते बाबा, मैंने बोला बाबा आपको तो कोई नहीं देख सकता है तो आप आके बता दो कहते हैं बस बोला और उसके बाद में आंसर ऐसे लिखता गया. एंड दिस इज नॉट वन चाइल्ड एग्जामिनेशन. चाइल्ड मतलब बच्चे. आप नीचे जाएंगे कब 3-4 हजार बच्चे आए हुए नीचे. ये सारे वो हैं जो सेंटर जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स जाते हैं, तो वो जाते हैं. भले कभी कभी जाते हो लेकिन उन्होंने वो कनेक्ट बहुत अच्छा बना लिया है. और वो बच्चे हैं ना, वो लॉजिक नहीं यूज करते. ऐसे थोड़ी है भगवान सुनेगा कि नहीं सुनेगा, वो सीधा करते और वो सबसे पहले उनकी सुनता है क्योंकि इनोसेंस है तो प्योरिटी है. अभी वाइट पे ज्यादा दाग लगे नहीं हुए तो कैचिंग और टचिंग क्या हो जाती है, बहुत अच्छी होती है. तो सबसे बड़ा पर्सनल बेनिफिट जो होने वाला है वो है परमात्मा के साथ सिर्फ एक प्रेयर और एक मेडिटेशन कनेक्ट नहीं, एक पर्सनल रिलेशनशिप कि वो मेरा मैं उसका, हम कोई भी बात एक दूसरे से कर सकते हैं और वो बात का जवाब हमें मिलता ही है. ये होना ही है, चाहे वो कोई छोटी सी बात है चाहे वो कोई बहुत बड़ी बात है. सिर्फ करना ये होता है, बात बोल दो और यहां से बच्चे की तरह साइलेंट हो जाओ कि बच्चे ने पेरेंट को बोल दिया है, अब बच्चे को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. और इसको आप ये 3 दिन में यहां कर सकते हैं. आप बोलो बोलो बाबा, चाहे आपकी लाइफ की कोई भी बात हो, वो चाहे आपकी लाइफ में फैमिली में बच्चों से रिलेटेड कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है जिसका आंसर नहीं है, या कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है, बच्चा बन के सरेंडर करो. नहीं कोई बात नहीं, पर प्रॉब्लम का आंसर भी उससे लेना है. कोई बात नहीं, अभी याद है ना, अभी सौंप दो कोई भी चीज. और सिर्फ अपनी नहीं, आपके अपनों की वो हो सकती है. यू जस्ट हैव टू सरेंडर. सरेंडर मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम को आप ठीक करो, ना ना, प्रॉब्लम को ठीक तो हमने ही करना है लेकिन ठीक करने का तरीका वो बता देगा. हम अभी तक क्या करते आए थे, भगवान ये प्रॉब्लम है तू ठीक कर देना. प्रॉब्लम वो ठीक नहीं कर सकता क्योंकि वो कर्म किसको करना है, हमको करना है. आप बच्चे का एग्जाम नहीं दे सकते, आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं ताकि वो एग्जाम में देकर आए. आप बच्चे का क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते, आप उसको आंसर बता सकते हैं, लिखने का काम उसका है. प्रॉब्लम हमें ठीक करनी है लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो हमें बता सकता है. ऐसे बिलीफ इस पर होगा नहीं लेकिन यह होता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद. लेकिन सिर्फ एक इंटेंशन रख लो कि मुझे भगवान के साथ ऐसा वाला रिश्ता बनाना है. नहीं बनाना, किस किस का मन है बनाने के लिए? मतलब बिल्कुल इतना होता है कि दुनिया में फिर किसी और पर डिपेंड करने की जरूरत खत्म, बिल्कुल फिनिश्ड. किसी और से कुछ पूछने की जरूरत फिनिश्ड. सीधा एक जैसे ऐसे होता है ना, ऑनलाइन करो आंसर आ जाता है, बिल्कुल वैसे वाला. लेकिन उसके लिए पहले किसको साफ रखना है, पहले किसको साफ रखना है, इधर. अब अपनी डायरी निकालें, हम अगले 3 दिन के लिए कुछ थॉट्स लिखेंगे क्योंकि हमें यह पता है कि लॉ क्या है, संकल्प से सिद्धि होती है. जो हम बार बार बोलेंगे वही होगा, राइट, वही होगा. तो हम कुछ थॉट्स लिख लेते हैं. पहला थॉट है I am a powerful soul. मैं शक्तिशाली आत्मा हूं. दूसरा संकल्प है मैं हमेशा खुश हूं. I am always happy. तीसरा संकल्प है क्योंकि आपके आसपास डर बहुत है, मतलब लोग जो आपके पास आ रहे हैं वो बहुत हैप्पी नहीं आ रहे हैं, तो आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपने आप से लिखेंगे कि मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं. मतलब यू आर गोइंग ऑन द वाइब्रेशन ऑफ फियरलेस वरीलेस, क्योंकि फियर की वाइब्रेशन के साथ आपके पास लोग आते हैं. मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं. आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट. चौथा, मैं सबको सुख और शक्ति देने वाली आत्मा हूं. आई रेडिएट पीस एंड पावर. इसका मतलब आपसे मिलने से लोगों को शक्ति और सुख की अनुभूति होगी. कभी कभी किसी की प्रॉब्लम भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये भी हो सकता है, हर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाती कई बार इमीजिएटली, एटलीस्ट मन को सुख और शक्ति तो मिल जाए। अगर सुख और शक्ति मिलती है ना, आत्मा में धैर्यता आ जाती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वेट करने की या सोल्यूशन आने की, इम्पेशंस खत्म हो जाता है। तो मैं सबको क्या देने वाली आत्मा हूं? जब हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे हम ऐसे वाले नहीं बनेंगे, किसी और का प्रभाव हम पर नहीं। सो दिस इज अ गिवर। देवी देवताएं कैसे होते हैं? ऐसे। तो दिस इज अ गिवर। तो मैं सबको सुख और शक्ति देने वाली आत्मा हूं। मेरी इंट्यूशन एंड डिसीशन मेकिंग पावर हाईएस्ट है। ये दो पावर्स आपकी रोल में बहुत जरूरी है। इंट्यूशन मतलब परख लेना कि क्या सही है, क्या सत्य है। तो मेरी इंट्यूशन एंड डिसीशन, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, ये हाईएस्ट है। अगला संकल्प, मैं आत्मा सिर्फ और सिर्फ सही के लिए खड़ी होती हूं। आई ऑलवेज स्टैंड ओनली एंड ओनली फॉर द राइट। जिस दिन देश का हर वकील सिर्फ राइट के लिए खड़ा होना शुरू हो जाए, रॉन्ग तो अपने आप होना खत्म हो जाएगा। Not always. As long as you know you are standing for the right for this person. We are not saying standing for the right for that person. But when I know that you are wrong and yet I want to prove you right, then that's not going very well with my karma. It can be going well with profession. Professionally it's fine. Karma wise, not fine. Because karma wise main kya endorse kar rahi hu? And then because I'm a good lawyer, maine aapko bacha bhi liya. तो आपको मैंने बचाया तो मैंने और क्या फैलाया? मैंने क्या फैलाया? कौन सी एनर्जी फैलाई देश और दुनिया के अंदर कि कुछ भी कर लो सब चलता है, कोई ना कोई तो मुझे बचा ही लेगा। जिस दिन वो कोई ना कोई के ऊपर फुल स्टॉप लग जाएगा, उस दिन बहुत सारे लोग गलत करने के पहले दो बार सोचेंगे। इसीलिए वी ओनली हैव टू कीप प्रोफेशनली वो राइट है। प्रोफेशनली ऑब्वियसली आपको दोनों साइड में कुछ भी हो आपको उसका केस लेना है, बट आपको सिर्फ प्रोफेशनली नहीं चेक करना है, क्या ये मेरा कर्म राइट है? जब मुझे 100% पता है कुछ और फिर भी हम उसको डिफेंड कर रहे हैं एंड उस पर कोई डिस्कशन नहीं है, इट इज ओनली फॉर यू टू आस्क योर सेल्फ। इस पर कोई लॉजिकल डिस्कशन हम नहीं करने वाले हैं। दिस इज ओनली सीड डाल दो यहां पर कि हमारे घर जो धन आए वो हमारे परिवार की परवरिश करता है। वो धन सिर्फ और सिर्फ किसी सही मार्ग से दुआओं के साथ आना चाहिए। तो कर्म को प्रायोरिटी रखें, और जो सही पे कर्म करते रहते हैं उनका नुकसान कभी होता नहीं है। उनके अंदर अगर धन कम भी आ गया ना, परिवार संतुष्ट रहेगा, क्योंकि वो धन सही विधि से आता है तो संतुष्टता लाता है, वो धन सही विधि से आता है तो घर में बरकत लाता है। अगर धन इधर उधर से आता है तो खर्चे उससे ज्यादा ही होते हैं, और कितने भी आराम के साधन आ जाएं मन को संतुष्टता नहीं मिलती है, क्योंकि वो सही विधि से नहीं आया। कार्मिकली, प्रोफेशनली नहीं, कार्मिकली वो राइट नहीं है। सो वी कैन जस्ट पुट इट एज आवर संकल्प कि मैं आत्मा सिर्फ और सिर्फ सही के लिए खड़ी हूं। आई एम ऑलवेज ओनली फॉर द राइट, इवन इफ आई एम द ओनली वन। इवन अगर हम अकेले खड़े हैं, हम सही के लिए खड़े होंगे, क्योंकि हम कलयुग वाली साइड पर नहीं। हम कौन सी वाली साइड पर होने वाले हैं? आपको पता है सत्युग में जुडिशरी नहीं होगी, सत्युग में जुडिशरी नहीं होगी, सत्युग में जेल नहीं होगी, सत्युग में पुलिस नहीं होगा, सत्युग में वकील नहीं होगा, सत्युग में जज नहीं होगा, क्योंकि सत्युग मतलब परफेक्ट प्योर डिवाइन सोसाइटी। नेक्स्ट संकल्प, मेरे घर धन दुआओं के साथ आता है। आई अर्न मनी विद ब्लेसिंग्स, मतलब क्लीन प्योर हाईएस्ट वाइब्रेशन कार्मिकली राइट अर्नड मनी। मेरे घर धन दुआओं से आता है। अगला, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। माय बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज। अगर शरीर में कोई भी हेल्थ इश्यू है उसके लिए एक अलग संकल्प लिखना। वोकैबुलरी क्या थी, जो है वो नहीं बोलना है, जो चाहते हैं कि हो वो ही लिखना है, वो ही बोलना है, वो ही सोचना है। तो अगर यहां दर्द है तो हम लिखते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। कोई भी पैरामीटर ऊपर नीचे है उस पैरामीटर को लिखो, ये बिल्कुल परफेक्ट है। शुगर लेवल परफेक्ट है, ब्लड प्रेशर परफेक्ट है। नंबर लिखना, लेकिन फिगर लिखना जो परफेक्ट वाला होता है वो लिखना है, अपना नहीं लिखना अभी वाला। हम बार बार कहते हैं ना मेरे को डायबिटीज है, मेरे को डायबिटीज है, वो कभी नहीं जाएगा, जीवन भर नहीं ठीक होएगा वो, क्योंकि हम कहते हैं मुझे है। इट इज एन अफर्मेशन, मुझे है। जो चाहिए हो वो ही बोलना है कि मुझे है, दूसरा कुछ नहीं है। अगला, मेरे रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके हैं। आपके पास हर एक जो आता है संपूर्ण विश्वास और समर्पण से आता है। पीपल कम एंड ट्रस्ट यू एंड सरेंडर देयर लाइफ टू यू, दे सरेंडर ऑल देयर मनी टू यू। ये एक बहुत ऊंचा कर्म होता है कि कोई हमारे पास अपना विश्वास और सब कुछ समर्पण करता है। तो हम कार्मिकली बहुत बॉन्डेड हो जाते हैं उस आत्मा के साथ। तो मेरा हर रिश्ता विश्वास की नींव पर है, मतलब जितना विश्वास वहां से मेरे पास आया है, आई ऑल्सो हैव टू रिटर्न द सेम एनर्जी। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। एंड आखिरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको रोज बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, जो आप दिन में हर एक घंटे के बाद बोल सकते हैं एक लाइन, कि परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। Draw a white light energy circle around your body like this. ये आपका सुरक्षा कवच, मतलब envelop yourself with a higher vibrational energy circle. परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ड्रॉ करें एक सर्कल, ऐसे पूरा ड्रॉ करना है ऐसा, doesn't matter. एनर्जी सर्कल ड्रॉ करना है अपने चारों तरफ। दुनिया में करते हैं ना, किसी के ऊपर नजर लगती है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, मिर्ची लेते हैं, ऐसे 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 करते हैं। हम रोज कर लेते हैं इसको, लेकिन हम मिर्ची वगैरह के साथ नहीं करते। हम क्या करते हैं, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ क्या है, एक सुरक्षा कवच। तो आपने क्या किया, हाईएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी का एक सर्कल अपने चारों तरफ बनाया। तो इसके अंदर लोअर एनर्जी एंटर नहीं करेगी, लेकिन आपसे ये हायर एनर्जी दूसरों को मिलेगी। तो इट्स लाइक अ ककून, एक ककून बना लिया परमात्मा की शक्तियों का अपने चारों तरफ। ठीक है, तो इसको लिख लिया, ये 8-10 संकल्प हैं। इनकी वोकैबुलरी अच्छे से पढ़ना, फिर आप कोई भी संकल्प इसमें डाल सकते हैं। इम्पोर्टेंट है कि जो हम बार बार सोचेंगे और बोलेंगे वही हम बनेंगे, वही हमारा शरीर बनेगा, वही हमारे रिश्ते बनेंगे, वही हमारा कर्म बनेगा, वही हमारा भाग्य बनेगा। इसको अब अगले 3 दिन के लिए आप हर बार खाना खाने से पहले जरूर बोलेंगे। आज लंच पे जाएंगे, थाली उठा। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे हम प्रसाद खा रहे हैं, आपको जितनी बार लेना है आप लीजिए, ये अखंड चलेगा भंडारा, लेकिन कभी वेस्ट नहीं कीजिए। जितनी बार लेना है, मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा यहां पे, क्योंकि वो प्रसाद है और वो कभी खत्म भी नहीं होता, लेकिन वेस्ट करना वो हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है। तो उसका ध्यान रखना, जहां तक हो सके थोड़ा साइलेंस में खाना खाएं और एनर्जी को अब्सॉर्ब करें, और खाने को जस्ट खाने से पहले 5 सेकेंड निकालें, इन शब्दों को दोहरा लें मन में, आपका खाना उसको अब्सॉर्ब कर लेगा और जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। कभी भी खाने के आसपास, पानी, चाय, कॉफी के आसपास कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं चलने चाहिए। तो जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, आप पानी, चाय, कॉफी कुछ नहीं पीना, कुछ भी नहीं पीना, मिल लो, फिर मन को ठीक करो, फिर पियो, पुटिंग द राइट हायर एनर्जी वर्ड इन दैट। क्योंकि जो अन्न में जाएगा और जो पानी में जाएगा वो मन और तन पर सीधा डायरेक्ट असर करेगा, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, जैसा पानी होता है वैसी वाणी होती है। इस शरीर के अंदर 70% वाटर है, वो वाटर हाई एनर्जी वर्ड्स के साथ अंदर जाना चाहिए। इजी है ये करना? हम बैठे बैठे मीटिंग में चाय, फिर से चाय, फिर से, नो नो, नॉट एट ऑल। मीटिंग कर लो फिर पियेंगे, क्योंकि वो आप भले नहीं बोल रहे हो, वो जो बोल रहे हैं वो भी आपकी चाय के अंदर जा रहा है ना। वो बोल रहे मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, वो सब आपकी चाय में चला गया, तो ऐसी चाय पीना नहीं। नहीं, आप कम से कम कितने भी मीटिंग में बैठे हो, आप 5 संकल्प शॉर्ट में लिखकर उसको रिपीट करें। इट कैन बी अ वेरी शॉर्ट वर्जन, ये लॉन्ग है, शॉर्टर वर्जन, लेकिन कम से कम 5 संकल्प रिपीट करें। और अभी अगले 3 दिन आप रोज रात को सोने से पहले डायरी में इसको फिर से एक बार लिखें। कितना टाइम लगेगा? हमने देख लिया ना, दाग को साफ करने के लिए कितना टाइम लगता है। डायरी में लिखने के लिए इसको 1 मिनट लगेगा थोड़े दिन के बाद तो। लेकिन हर रोज लिखेंगे 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 सोने से पहले, तो कहां रिकॉर्ड हो रहा है? यहां रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए सीधा होकर बैठे, 1 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बैठते हैं। हमारा अगला सत्र शुरू होने लगा है, तो बिल्कुल साइलेंस में स्थिर बैठकर, जब तक हमारी बड़ी दीदियां, भाई और मेहमान मंच पर आए, आप इन 10 संकल्पों को अच्छे से पढ़ें, 2-4 बार पढ़ें, याद हो जाएगा उसके बाद, बहुत इजी है। और फिर उसको साइलेंस में बैठकर अभी अपने मन में रिपीट करेंगे। ओम शांति। बिल्कुल साइलेंस, ये 2 मिनट जो बीच में मिलेगा ये बातें करने के लिए नहीं है, ये अपने आप के लिए है। तो भले आप डायरी खोल के उन 10 संकल्प को रीड कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, और फिर उसको साइलेंस में बैठकर अपने मन के साथ रिपीट कर लीजिए।